आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और यूक्रेन के उनके अपने हमनसब दिमित्रो कोलेबा ने आज नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान मौजूदा रूस यूक्रेन तनाजे और उसके वसीतर असरात पर तबादला ख्याल किया। इनकम टैक्स महकमे ने कांग्रेस पार्टी को 1,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली का नोटिस जारी किया है। बांदा के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जराइम पेशा शख्स से सियासतदान बने मुख्तार अंसारी की मौत की तहकीकात करने के लिए एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इसराइल के एक फजाई हमले में शाम के 36 फौजियों समेत 40 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। बैडमिंटन में एन सकी रेड्डी और बी सुमीत रेड्डी पर मुश्तमिल मिक्स डबल्स की भारतीय जोड़ी मैड्रिड स्पेन मास्टर्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और आईपीएल क्रिकेट में बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने जीत के लिए 183 रन का निशाना रखा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और यूक्रेन के उनके हमनसब दिमित्रो कोलेबा ने आज नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान रूस और यूक्रेन के दरमियान मौजूदा तनाजे और उसके वसीतर असरात पर तबादला ख्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात के बारे में बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन समेत हमजहत रिश्तों को मुस्तहकम करने के लिए भारत के अज़्म का इआदा किया। मीटिंग के दौरान अपने इफ्तिताही बयान में उन्होंने कहा कि यूक्रेन के वजीर खारजा का यह दौरा यूक्रेन के हालात को समझने के लिए एक मौका फराहम करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया महीनों में दोनों रहनुमाओं ने मुतअद्दिद सतह पर बाहमी बातचीत की है और कुछ दो तरफा लाए अमल भी तय पाए हैं, जिससे दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात में तेजी आई है।
I'm very glad that despite our both of us have fairly heavy travel schedules, we have been able to match it and organize this meeting. In recent months, we've had actually interactions at various levels. I'm glad to see that some of our bilateral mechanisms have also met. I think this has created a certain momentum in our bilateral relationship. And today, after this discussion in the afternoon, we look forward also to the meeting of the Intergovernmental Commission.
यूक्रेन के वजीर खारजा कल दो रोजा दौरे पर भारत पहुंचे हैं। इनकम टैक्स महकमे ने कांग्रेस पार्टी को 1,823 करोड़ रुपए की वसूली का एक नया नोटिस जारी किया है। सरकारी जराये के मुताबिक ये टैक्स वाजिबात गुज़िश्ता कई सालों से ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया है कि इनकम टैक्स महकमे को अहम अपोजिशन पार्टी को हिरासा करने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब खड़गे ने कहा कि इनकम टैक्स महकमा पहले ही कांग्रेस पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपए निकाल चुका है, जो कि उसके जरिए क्राउड सोर्सिंग के जरिए जमाकर्दा फंड है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि इनकम टैक्स महकमे पर इल्जाम लगाकर कांग्रेस लीडर अपनी मायूसी का इजहार कर रहे हैं। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के तर्जुमान सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टैक्स जमा करने या अपील दायर करने के सही तरीकाकार पर अमल पैरा होने में नाकाम रही है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि इनकम टैक्स कमिश्नर से लेकर इनकम टैक्स सालिसी करने वाले ट्रिब्यूनल, यहां तक कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इनकम टैक्स महकमे के इकदाम को बरकरार रखा और उसे दुरुस्त करार दिया है। जनाब इस्लाम ने कहा कि किसी भी रजिस्टर्ड सियासी पार्टी के लिए इनकम टैक्स कानून के तहत हर साल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है और लाजमी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कानून के खिलाफ वर्जी की है और न सिर्फ टैक्स रिटर्न दाखिल करने में ताखीर की बल्कि आमदनी के बारे में भी गलत बयानी से काम लिया। एक 3 रुकनी कमेटी जराइम पेशा शख्स से सियासतदान बनने वाले मुख्तार अंसारी की मौत की अदालती तहकीकात करेगी। उसकी मौत बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कल रात हरकत कल्ब बंद होने से हो गई थी। 63 साल मुख्तार अंसारी मऊ सदर सीट से 5 मरतबा का साबिक एमएलए था और वो यूपी और पंजाब में 2005 से जेल में बंद था। आकाशवाणी के हमारे नामानिगार ने बताया है कि बांदा के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एमपी एमएलए कोर्ट बांदा की एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह को इस केस में तहकीकाती अफसर के तौर पर तकरर किया है। पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद मुख्तार अंसारी के जस्द खाकी को उनके बेटे उमर अंसारी के हवाले कर दिया गया और अब उसे आखिरी रसूम की अदायगी के लिए गाजीपुर ले जाया गया है। دو ڈاکٹروں کے ایک پینل کے ذریعے اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا جس کی ویڈیوگرافی بھی کی گئی. مختار انصاری کی موت کے بعد امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے پورے اتر پردیش میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. اتر پردیش کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس پرشانت کمار نے کہا کہ باندہ، مئو، غازی پور اور وارانسی ضلعوں میں اضافی پولیس اہلکاروں کے ساتھ ساتھ سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF کی ٹیمیں بھی تعینات کی گئی ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے مصنوعی ذہانت اور AI ٹیکنالوجیز تک رسائی دینے سے پہلے مناسب تربیت فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ AI ایک اچھا وسیلہ ہے لیکن اگر کوئی اس کا استعمال مناسب تربیت کے بغیر کرتا ہے تو اس کا غلط استعمال ہونے کے امکانات ہیں. نئی دلی میں انسان دوست بل گیٹس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت کی طرح کی جمہوری ملک میں کوئی بھی ڈیپ فیک کا استعمال کر سکتا ہے. انہوں نے اصل اور ڈیپ فیک کے درمیان فرق کا پتہ لگانے کے بارے میں واضح خطوط وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا. جناب بل گیٹس نے AI اختراع میں بھارت کے مرکزی رول کو اجاگر کرتے ہوئے بھارت کی ٹیکنالوجیکل ترقی کی بھی ستائش کی. وزیراعظم جناب مودی نے پورے بھارت میں صنفی مساوات اور اقتصادی بااختیاری کے عمل کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں شمولیت کے رول کی اہمیت پر بھی زور دیا.
جب میں دنیا میں ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کی بات سنتا تھا میں کہتا میرے دیش میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا کہ ڈیجیٹل ڈیوائیڈ ہو. اور ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر یہ اپنے آپ میں بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے. آج میرے یہاں گاؤں تک میں یہ ڈیجیٹل فیسلٹی پہنچانا چاہتا ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ بہت بڑا ٹارگیٹ گروپ ہے. مہیلائیں ترنت نئی چیزوں کو سویکار کرتی ہیں. یہ میرا انوبھو ہے میرے دیش میں.
انہوں نے کہا کہ حکومت صحت، تعلیم اور زرعی شعبے کی جدیدکاری کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی طاقت کا استعمال کر رہی ہے. وزیراعظم نے کہا کہ بھارت میں خواتین نئی ٹیکنالوجی اپنانے کے سلسلے میں زیادہ سرگرم ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حکومت نے نمو ڈرون دیدی اسکیم شروع کی ہے. قابل تجدید توانائی کا ذکر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت اس شعبے میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. جناب مودی نے مزید کہا کہ ملک گرین ہائیڈروجن کے شعبے میں بھی مزید ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ آکاشوانی ہے. انتخابی کمیشن کا سی ویجل ایپ ووٹروں میں زبردست مقبولیت اختیار کر گیا ہے. عام انتخابات کا اعلان کیے جانے کے بعد سے اب تک شکایت درج کرانے سے متعلق اس ایپ کے ذریعے 79,000 شکایتیں موصول ہوئی ہیں. انتخابی کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 99% سے زائد شکایتوں کا ازالہ کیا جا چکا ہے اور ان میں سے تقریباً 89% شکایتوں کا 100 منٹ کے اندر اندر ازالہ کر دیا گیا. 58,500 سے زیادہ موصولہ شکایتیں غیر قانونی ہورڈنگز اور بینروں سے متعلق ہیں. 1400 سے زائد شکایتیں پیسے، تحائف اور شراب کی تقسیم سے متعلق تھیں. ان میں سے 3% شکایتیں عمارتوں اور دیواروں و املاک پر پوسٹر بینر لگا کر خراب کرنے سے متعلق درج کی گئیں. ہتھیار دکھانے اور دھمکانے کے خلاف درج کی گئی 535 شکایتوں میں سے 529 کا فوری طور پر نمٹارا کر دیا گیا. 1,000 سے زیادہ شکایتیں مقررہ مدت سے تجاوز کرتے ہوئے انتخابی مہم جاری رکھنے کے خلاف درج کی گئیں. سی ویجل انتخابی کمیشن کے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے ذریعے انتخابات کو آزادانہ، منصفانہ اور لالچ سے پاک بنانے کو یقینی بنانے کے اقدام کا ایک حصہ ہے. بہار میں پہلے مرحلے کے لوک سبھا انتخابات کے تحت گیا، نوادا، جموئی اور اورنگ آباد پر مشتمل 4 لوک سبھا پارلیمانی حلقوں میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کل کی جائے گی. کل 72 امیدواروں نے ان 4 پارلیمانی حلقوں کے لیے اپنے پرچے داخل کیے ہیں. سب سے زیادہ 22 امیدواروں نے گیا لوک سبھا سیٹ کے لیے پرچے بھرے ہیں. اس کے بعد 21 امیدواروں نے اورنگ آباد سیٹ پر جبکہ 17 امیدواروں نے نوادا سیٹ پر اپنے پرچے داخل کیے ہیں. جموئی پارلیمانی حلقے میں 12 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں. ان حلقوں میں امیدواروں کے ذریعے نام واپس لینے کی آخری تاریخ 2 اپریل ہے اور ان پارلیمانی حلقوں میں 19 اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے. اسد الدین اویسی کی قیادت والی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بہار میں 16 لوک سبھا سیٹوں پر چناؤ لڑے گی. AIMIM کے ریاستی صدر اختر الایمان نے اعلان کیا ہے کہ پارٹی پاٹلی پتر، سمستی پور، سیتامڑھی، والمیکی نگر اور مدھوبنی پارلیمانی حلقوں میں چناؤ لڑے گی. آسام سرکار نے ریاست کے 4 ضلعوں میں مسلح افواج سے متعلق خصوصی اختیارات کے ایکٹ AFSPA میں 1 اپریل سے 6 مہینے کے لیے توسیع کر دی ہے. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्रीमत स्वामी समरानंद जी महाराज भारत की रूहानी बेदारी के एक अजीम कायद थे और उनका इंतकाल सबके लिए एक ज़ाती अलमिया है। एक ब्लॉग में जनाब मोदी ने कहा कि चंद साल पहले स्वामी आत्मस्थानंद इस दारे फानी से कूच कर गए थे और अब स्वामी समरानंद के इंतकाल से लोगों को गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि दोनों संत जदीद तालीम, हुनरमंदी और खवातीन को बाख्तियार बनाने के तई इंतहाई संजीदा थे। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत मजबूत अदालती निजाम वाला मुल्क है, जहां अदलिया किसी ग्रुप या किसी शख्स के लिए कोई समझौता नहीं करती। भारतीय जमहूरियत को मुनफरिद करार देते हुए जनाब धनखड़ ने कहा कि भारत को कानून की हुक्मरानी के मामले में किसी से कोई सबक सीखने की जरूरत नहीं है। आज नई दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA के 70वें यौम तासीस की तकरीबात से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि कानून की नजर में सभी का बराबर होना भारत का नया कानून है और जो खुद को कानून से बालातर समझते थे, कानून उन्हें भी कटहरे में खड़ा कर दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने COVID-19 आलमी वबा के दौरान खिचड़ी तकसीम करने में मुंबईयना बेजाबतियां बरतने के ताल्लुक से कालेधन को गैर कानूनी ढंग से जायज बनाने से मुतालिक अपनी छानबीन की कार्रवाई के सिलसिले में शिवसेना UBT के लीडर अमोल किर्तिकर को 8 अप्रैल को पेश होने का हुक्म दिया है। किर्तिकर, जो मुंबई शिमाल मगरिब सीट से लोकसभा इंतखाबात के उम्मीदवार हैं, उन्हें इससे पहले 27 मार्च को पूछताछ के लिए एजेंसी ने तलब किया था, लेकिन वो गैर हाजिर रहे थे और 8 हफ्ते की मोहलत की गुजारिश की थी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खतरात के तनाजुर में चीन के ठेकेदारों ने पाकिस्तान में दासू और दयामर भाषा बांध के प्रोजेक्टों पर तामीरी काम रोक दिया है। इस दौरान चीन के तफ्तीशकारों की एक टीम 26 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा सूबे में चीन के शहरियों पर खुदकुश हमले के मामले में छानबीन के अमल में शामिल होने के लिए आज इस्लामाबाद पहुंची। इस हमले में चीन के 5 शहरी और एक पाकिस्तानी ड्राइवर हलाक हो गए थे। मुल्क शाम के अलेप्पो सूबे में आज सुबह इसराइल के फिजाई हमले में शामी फौज के 36 फौजी मारे गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में इस तरह का दूसरा हमला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के फजाई हमलों में लबनान के हिजबुल्ला के रॉकेट डिपो को निशाना बनाया गया। मरने वालों में 6 अफराद का ताल्लुक हिजबुल्ला ग्रुप से है। शाम की सरकारी खबर रसां एजेंसी सना के मुताबिक यह हमला सुबह की अव्वलीन सातों में हुआ, जिसमें कई शहरी भी जख्मी हो गए। साल 2011 में शाम में खाना जंगी की शुरूआत के बाद से अब तक इसराइली सैकड़ों हवाई हमले कर चुका है। गाजा में इसराइल की तरफ से जारी जवाबी कार्रवाई के तनाजुर में बैनुल अक्वामी इंसाफ की अदालत ICJ ने इसराइल को हुक्म दिया है कि वह गाजा में भुखमरी के हालात न होने देने के लिए बिला रुकावट इमदाद पहुंचाने के सिलसिले को यकीनी बनाए। गाजा चंद हफ्तों में भुखमरी का शिकार हो सकता है। इन अंदेशों के दरमियान इंसाफ की बैनुल अक्वामी अदालत ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला किया है। बैडमिंटन में एन सकी रेड्डी और बी सुमित रेड्डी पर मुश्तमिल मिक्स डबल्स की भारतीय जोड़ी मैड्रिड स्पेन मास्टर्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-14, 11-21, 17-21 से शिकस्त दी। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु थाईलैंड के खिलाड़ी से हारने के बाद खवातीन सिंगल्स की दौड़ से बाहर हो गई हैं। खवातीन डबल्स के क्वार्टर फाइनल में नितिशा क्रेस्टो और अश्वनी पोपना पर मुश्तमिल भारतीय जोड़ी भी ताइवान की जोड़ी से 13-21, 19-21 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने जीत के लिए 183 रन का निशाना रखा है। ये मैच बेंगलुरु के एम चन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। दोनों टीमें अब तक IPL में 32 मरतबा एक दूसरे का सामना कर चुकी हैं, जिनमें RCB ने 14 और KKR ने 18 मैच जीते हैं। RCB 2015 के बाद से अब तक घरेलू मैदान में KKR को शिकस्त नहीं दे सकी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन में अब तक 2 मैच खेले हैं। इनमें पहला मैच वो चेन्नई सुपर किंग्स से हार गई थी, जबकि दूसरे मैच में RCB ने पंजाब किंग्स को हराया था। टूर्नामेंट की शुरुआत में सनराइजर्स हैदराबाद को हराने के बाद आज का मैच कोलकाता नाइट राइडर्स का दूसरा मुकाबला है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और यूक्रेन के उनके अपने हमनसब दिमित्रो कोलेबा ने आज नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान मौजूदा रूस यूक्रेन तनाजे और उसके वसी तर असरात पर तबादला ख्याल किया। इनकम टैक्स महकमे ने कांग्रेस पार्टी को 1,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली का नोटिस जारी किया है। باندہ کے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ نے جرائم پیشہ شخص سیاستداں بنے مختار انصاری کی موت کی تحقیقات کرنے کے لیے ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اسرائیل کے ایک فضائی حملے میں شام کے 36 فوجیوں سمیت 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بیڈمنٹن میں این سکی ریڈی اور بی سمیت ریڈی پر مشتمل مکس ڈبلز کی بھارتی جوڑی میڈرڈ اسپین ماسٹرز ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں بنگلورو نے کولکاتہ نائٹ رائیڈرز کے سامنے جیت کے لیے 183 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔